His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Shri Radha Madan Mohan Ki Jai, Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai, Samubeto Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Putale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatta. लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आठवें अध्याय विराट रूप का दर्शन। कल तक हम त्रिनावर्त सूरवत तक पाठ किया था, सातवें अध्याय तक, और अब भगवान का विश्व रूप दर्शन, विराट रूप का दर्शन। इस घटना के बाद, मतलब ये कौन सी घटना के बाद? त्रिनावर्तासुर के उद्धार के बाद। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गमुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्गमुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्गमुनि नंद महाराज यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्गमुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहे हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थ के कार्य में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए ही केवल उन्होंने गृहस्थ के घर में जाते हैं। यदि कोई ये पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामले में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थ के घर जाते हैं। हम भी देखते हैं ऐसे, यद्यपि मंदिर हैं, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं बल्कि कुछ सुनने के लिए बहुत कम आदमी आते हैं। मतलब आध्यात्मिक जीवन का जरूरत क्या है ये उनको पता नहीं, तो इस ज्ञान प्रदान करने के लिए, उनको समझाने के लिए साधुओं को गृहस्थों के घर में जाना है, केवल यही उद्देश्य लेकर जाना है। और साधु यहाँ भी साधु चार आश्रम के ही हो सकते हैं, साधु कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो और सन्यासी हो, सब साधु पुरुष होते हैं, साधु पुरुष मानना चाहिए उनको। और इनके कर्तव्य क्या है? सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करना। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधन किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्य बानिया का आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य के स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा ये जानना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग करता है। ज्योतिष ये शास्त्र को वेद के 6 अंगों का एक अंग माना गया है। वेद एक शरीर के रूप में वर्णन हुआ है वेद का, और इस शरीर का 6 अंग है जिस कारण वेद को षडंग वेद कहा जाता है। 6 अंग समन्वित ये शरीर है वेद का, उसका ये है वो 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष और एक क्या है दर्शन, ज्योतिष, अब मैं 5 याद आ रहा है, 6 तो ज्योतिष उसमें से एक है, 6 में से एक है। हाँ, शरीर का अंग जैसा होते हैं हाथ पाँव, हाथ पैर, सर, वैसा वेद का भी 6 अंग हैं, उनमें से ज्योतिष है एक। और ज्योतिष कौन से अंग है? वेद का आंखें हैं ज्योतिष, वेद रूप शरीर का आंखें हैं ज्योतिष। आंखों के द्वारा हम देखते हैं और वेद का जो अंग ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र जो है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। बल्कि ये दर्शन और भी गंभीर और विस्तृत होता है। आंखों के द्वारा हम केवल वर्तमान को देख सकते हैं और अतीत और भविष्य का थोड़ा सा याद हम कर सकते हैं, अतीत का याद कर सकते हैं, भविष्य का अनुमान कर सकते हैं। बल्कि ज्योतिष के द्वारा अतीत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल को ही दर्शन हो सकता है। ज्योतिष ऐसी एक विज्ञान है और ये ज्योतिष, जैसे ज्योतिष का विचार के द्वारा कैसे मनुष्य का अतीत का कार्यकलाप और उसका वर्तमान का, उस वर्तमान में उसका परिणति और भविष्य में क्या होने वाला है, ये भी हम दर्शन कर सकते हैं या हम जान सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिष का बहुत ही प्राधान्य दिया गया है हमारे शास्त्रों में। तो और इस शास्त्र का विशेष पंडित, विशेष विद्वान थे गर्ग मुनि। और यहाँ हमें क्या पता लग रहा है, गर्ग मुनि कौन थे? गर्ग मुनि थे जदु वंश के कुल पुरोहित। वैसे हर वंश का कुल पुरोहित का भी वंश होता था। जैसे पांडवों का कुल पुरोहित कौन थे? चंद्रवंश के धौम ऋषि थे, उनके कुल पुरोहित। और जदु वंश के कुल पुरोहित थे गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि को वसुदेव ने भेजा था नंद महाराज के घर, क्योंकि उन्होंने, उनके कुल पुरोहित थे, तो वसुदेव ने सोचा कि मेरे बच्चा का जो ये संस्कार जो है वो कुल पुरोहित द्वारा ही किया जाए, तो इसलिए उन्होंने नंद महाराज को वहां उनको भेजे थे। तो नंद महाराज के वहां जाने पर नंद महाराज ने उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको स्वागत किया। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वो है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। मतलब भगवान को जो भली भांति जानते हैं वो है सही ब्राह्मण। और उस ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, जब जो भगवान को सही रूप से जानते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। ब्राह्मण का भी ऐसे पांच कोटि होते हैं, पांच स्तर होता है ब्राह्मणत्व का। जैसे जन्म के अनुसार सभी शूद्र होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो। जन्म के अनुसार, जन्म के कारण सभी शूद्र है, मतलब सब अज्ञान है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म के अनुसार सब शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण के भी लड़के हो या क्षत्रिय के भी लड़के हो, सब शूद्र है। बल्कि संस्कारात भवति द्विज, जो द्विजत्व प्राप्ति, द्विज का मतलब क्या है, जिसका दो जन्म हुआ, द्विज दूसरा जन्म, दोबारा जिसको जन्म हुआ, तो वो दूसरा जन्म कौन से जन्म है, आत्मा का जन्म। शरीर का जन्म माता पिता से होता है, बल्कि आत्मा का जन्म होता है वेद रूपी माता और गुरु रूपी पिता के माध्यम। वेद माता और वेद माता, वेद को भी माता कौन है, एक रूप से तो वेद को माता माना गया है और वेद को भी माता है। वेद का माता कौन है, वेद माता है गायत्री, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय में भगवान गायत्री मंत्र प्रदान करके ब्रह्मा जी ने जब गायत्री पर ध्यान किए थे तब उनके हृदय में गायत्री के माध्यम वेद का प्रकाश हुआ था, इसलिए वेद गायत्री को वेद माता कहा जाता है। और यहां वेद भी माता है जिसकी द्वारा आत्मा का जन्म होता है। मतलब आत्मा अब अज्ञान में है। शूद्र का मतलब, शूद्र जन्म न जाए, तो शूद्र का मतलब क्या है, शूद्र का मतलब है जो अज्ञान है, जिसको जो जिसको ज्ञान नहीं। तो अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश शुरू होता है गायत्री के जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा। और ये मंत्र किस कैसे प्राप्त होते हैं, मंत्र प्राप्ति का उपाय क्या है, सद्गुरु से दीक्षा के माध्यम मंत्र मिलता है। ये जो मंत्र प्राप्ति ये दीक्षा के माध्यम होता है। तो अतएव ये जो दीक्षा विधि जो है, ये दीक्षा विधि के माध्यम आत्मा का जन्म होता है। शरीर का जन्म तो हो चुका है, बल्कि आत्मा का जन्म, आत्मा का स्वरूप प्रकाश तब से शुरू होता है जब दीक्षा के माध्यम गायत्री मंत्र प्राप्त होकर द्विजत्व प्राप्ति होता है, दूसरा जन्म होता है। तब ये जन्म कौन से जन्म है, तब ये द्विज द्वितीय जन्म, किसका जन्म है, आत्मा का जन्म। तो संस्कार आती है, कौन से, ये संस्कार क्या है, दीक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार के द्वारा आत्मा का जन्म होता है। जन्म संस्कारात भवति द्विज, और तब वेद पाठ करने का अधिकार मिलता है। तो वेद पाठ करने के बाद जो ज्ञान प्राप्ति होता है, वैदिक ज्ञान, उसे विप्रत्व प्राप्ति होता है। वेद पाठात भवेत विप्र, वेद पाठ के कारण विप्रत्व, विप्र किसको, ब्राह्मण को विप्र भी कहा जाता है, तो विप्र कौन है, कौन से ब्राह्मण विप्र है, जो वेद पाठ में पारंगत होते हैं। वेद पाठात भवेत विप्र, और उसके पश्चात ब्रह्मा जानाति इति ब्राह्मण। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होता है, मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रकृति का, परा प्रकृति का, भगवान का अंतरंग शक्ति का ज्ञान जब होता है, तब वो ब्राह्मणत्व प्राप्ति होता है। साधारणतया ब्राह्मणत्व, ये जो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण स्टेज जो है, ये ब्रह्म ज्ञान का स्टेज है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के परे है, ब्रह्म ज्ञान के परे है भगवत तत्व ज्ञान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो ये ब्रह्म ज्ञान से परे है परमात्मा ज्ञान, और उसके पश्चात है भगवत तत्व ज्ञान। और ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या होता है, भगवान के चरण में शरणागति होता है, तो उस स्थिति को कहा जाता है वैष्णव, वैष्णव। तो ऐसे नंद महाराज ने गर्गमुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों बोला, ब्राह्मण के रूप में क्यों संबोधन किए, क्योंकि गर्गमुनि को पूर्ण तरह भगवान के विषय में ज्ञान था। ब्राह्मण वो है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष है। अच्छा, एक दक्ष ब्राह्मण अन्न उपजाति और क्षत्रिय तथा वैश्यों के, वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। तो वसुदेव थे क्षत्रिय, तो उनके कुल गुरु थे गर्गमुनि, क्षत्रिय के गुरु होते हैं ब्राह्मण, वैश्य का भी गुरु होते हैं ब्राह्मण, नंद महाराज वैश्य थे। तो जब गर्गमुनि उनके घर में आए, तो गुरु के रूप में उनका दर्शन करके उनको उनको स्वागत किया। नंद महाराज जाति से वैश्य थे, और वे गर्गमुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते थे, अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्र कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि वे केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्गमुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इस बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है, मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संजक वश ये लोग का ये लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। अपने फलित ज्योतिष का गणन ज्योतिष फलित ज्योतिष गणना से गर्गमुनि समझ गए थे कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे, क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्वान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद महाराज को ज्ञात न था। गर्गमुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को ये भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। गणना के अनुसार देवकी के कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति चाहे यही कहता है कि देवकी के आठवें संतान कन्या है। इस प्रकार गर्गमुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे, और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या का दुर्गा ने कभी उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं और यदि वो इस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वो पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर देंगे। अतः मैं इस सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दे। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूं, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दे। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु ये भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि वो संस्कार संपन्न करे। तो ये एक समस्या था। यह नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बोला कि आप जैसे एक महान ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण को मेरा गृह में पदार्पण हुआ है, तो मेरे बच्चे दो बच्चे का संस्कार आप करवा दीजिए। तो गर्ग मुनि ने तब बोला, देखो मैं अगर ये संस्कार करूंगा और चूंकि मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूं और ये अगर पता लग जाएगा कि मैं संस्कार किया तो कंस सोचेगा कि ये तो वसुदेव का लड़का, इसी तरह उसको तुम्हारा घर में भेजवा दिया है। तो ये सोचकर वो आकर कंस को, कृष्ण को, कंस ने आकर कृष्ण को हत्या करने का कोशिश करेगा। ऐसे भक्तजन डरते हैं क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, तो डरता है कि अगर कुछ हो जाए। भक्तों का मन में भगवान के प्रति प्यार के कारण ऐसी शंका रहता है, अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। और भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला का तो विशेषता ये है कि वृंदावन लीला में कृष्ण अपने अपने भगवत्ता को गोपन कर रखे, एक साधारण गोप बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। और भक्तोगण, उनके भक्तों में उनके प्रति प्रेम के कारण ऐसे आशंका करते हैं कि अगर कुछ नुकसान हो जाए, खतरनाक हो जाए। जैसे रामचंद्र के विषय में भी, जब विश्वामित्र ने आकर महाराज दशरथ को बोला कि आपको लड़का को दीजिए, तब रामचंद्र को उम्र कितना था, 14 साल का था। तारक राक्षसी को वध करने के लिए यही केवल सके। तो दशरथ बोला, वो तो बच्चा है, वो क्या करेगा, मैं मेरा सैनिकों को लेकर जाकर मैं आपको ये वाणी को निर्देश को पूरा करूंगा, बल्कि बच्चे को घर में रहने। तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए, बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं, उसको ही लेना। तो दशरथ ने रामचंद्र को भेजा, बल्कि उनका मन में बहुत ही शंका हो रहा था, ना जाने क्या होगा, ये बच्चा है और तारक राक्षसी इतना भयंकर राक्षसी थी कि स्वर्ग का देवताओं ने भी उससे डरता था। तो ऐसा ही भक्ति का विशेषता है। यद्यपि भगवान सारे संसार के सारे कुछ देखभाल कर रहे हैं, बल्कि भक्त क्या सोचते हैं, अगर मैं प्रसाद समय पर नहीं लाएंगे तो भगवान को करेंगे, है ना। इस भावना लेकर भक्तों ने भगवान के लिए खाना पकाते हैं और सही समय पर उनको भोग निवेदन करते हैं। जो अभक्त है वो सोचते हैं भगवान को खान देने का क्या है। ऐसा कुछ मंदिर है भारत में जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर भी, बल्कि क्या प्रसाद के लिए क्या भगवान का भोग कैसे चढ़ाते हैं। थोड़ा सा चीनी का एक छोटा सा पात्र में या पानी, और जब प्रभुपाद ने ऐसे पूछे थे ये क्या ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो उसका उत्तर मिला भगवान तो खाते नहीं है। हाँ, ऐसे भगवान खाते नहीं हैं जो विश्वास भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान नहीं खाते, बल्कि जो भगवान को प्यार करते हैं उनके लिए भगवान खाते हैं। और भगवान खुद भी बोलते हैं कि मैं उनको दिया हुआ जो कुछ है मैं ग्रहण करता हूं, अश्नामी मैं खाता हूं, पत्रं पुष्पं फलं तोयम् योमे भक्ता प्रजच्छति तदहं उपरितं अश्नामी प्रजतात्मनः। पत्रं पुष्पं, पत्ता फूल, पानी और फल जो हमको देते हैं भक्ति के साथ, भक्ति उपरहितम अश्नामी जो हमको देते हैं, भेंट देते हैं, तो उसको मैं खाता हूं। ये अश्नामी शब्द का अर्थ क्या है? ग्रहण नहीं, अश्नामी शब्द का अर्थ है खाना। भगवान कहते हैं कि खाता हूं मैं। तो भक्ति के साथ जब भगवान को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसको खाते हैं। जैसे भगवान जब विदुर का घर में गए थे तो विदुर भगवान को खिला रहे थे, तो भक्ति में उतने इतने मगन हो गए थे, वो केला को उनका एकदम अन्न मनुष्क होकर केला का जो छिलका होता है वो केला को फेंक कर छिलका भगवान को दिया, और भगवान वो छिलका खाने लगा क्योंकि भक्ति के साथ उसका निवेदन हुआ था। तदहम भक्ति उपरी तमश्नामी प्रजतात्। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गोशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। तो ये शंका था कि अगर कंस का पता चल जाएगा तो क्या होगा। तब नंद महाराज ने बोला ठीक है, इसका संस्कार ऐसे हम करवाएंगे ताकि किसी को पता ना चले। ये बहुत आरंभ के साथ धूम धड़ाका के साथ इसका आयोजन हम नहीं करेंगे, एकदम गोपन रूप से, गुप्त रूप से हम करेंगे गौशाला। और एक विचार है, चूंकि गौए भगवान के बहुत प्यारे हैं, तो इसलिए भगवान अपना नामकरण गौशाला में ही करवाया, नामकरण संस्कार। उन्होंने नंदो को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। राम का मतलब है मनोरम, जो मन को आनंद प्रदान करता है, इसलिए सबको मन में आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम है राम। और भविष्य में वो अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। राम बलराम। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा जदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा, कि दो कुल को निकट लाने के लिए आकर्षण कर रहे हैं। दो कुल को मतलब जदुकुल और नंद महाराज के वैश्यकुल को, इसलिए उनका नाम संकर्षण। और संकर्षण नाम का और एक विचार ये भी है, क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षण किया गया, लाया गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण। इसका अर्थ ये हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के तीन नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से ये बात प्रकट ना होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त ये पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण क्यों? क्योंकि उनका अंग का कांति रंग, शरीर का रंग था कृष्ण श्याम घनश्याम। गर्ग मुनि ने बताया कि चार युग में ये आते हैं, ये बच्चा चार युग में आते हैं, और पहले ये श्वेत वर्ण धारण करके सफेद रंग वाले थे, उसके बाद रक्त वर्ण, श्वेत रक्त तथा पीत इदानी कृष्णतांग, इदानी मतलब अब ये कृष्ण रंग धारण किए, अतएव इसका नाम होगा कृष्ण। और तो कृष्ण का दो नाम रखा गया, क्योंकि पूर्व में ये वसुदेव का पुत्र था, इसलिए इसका नाम होगा वासुदेव, और क्योंकि इसका अंग कांति श्याम है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। आपने बहुत सारे लीलाएं और बहुत सारे गुणों के कारण इनका बहुत सारे नाम भी होगा। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से ये भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतवे वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विशेष विषय में हर बात जानता हूं, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। ये बालक समस्त ग्वालों तथा गौओं का अत्यंत प्यारा होगा, इसलिए क्या नाम होगा? गोपाल। और इसकी उपस्थिति वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों ना आ जाए। हे ब्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्म में चारों उच्चकों से साधु जनों को कोई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली होगा कि जो भी उसका भक्त बनेगा कोई भी उसको सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, इसी तरह आपके पुत्र को के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। ऐसे गर्ग मुनि परोक्ष रूप में क्या इंगित दे रहे हैं कि ये आपका ये लड़का स्वयं भगवान। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर अपना बालक, आपका बालक शक्ति सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह में उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें। जिससे ये किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरा शब्द में गर्गमुनि ने नंद महाराज को ये भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्गमुनि ने ये भी संकेत किया, आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहे और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्गमुनि ने नंद महाराज को विश्राम दिलाया कि विश्वास इस प्रकार गर्गमुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। ये जानकारी देकर गर्गमुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। इस घटना के से कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमोदित करते रहते। उनके कमर तथा पैरों में बंधे घंटिकाएं रुनछुन बजती और वे मनोहरी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आए। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी मालाओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती। जो ही वे यशोदा तथा रहिनी के पास रेंगते आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के अंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पैपान करते रहते तो माताओं उनकी दतुलियों देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसते जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपने पड़ोसियों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रहिनी अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों बैलों बंदरों जल अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रत्यक्ष करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी ना पाती थी। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों में कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रहिनी को परम आनंद प्रदान करते। यशोदा तथा रहिनी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सके। वे कहते, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं बजराती बढ़ जाती ये हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गाय दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गाय का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं तो दूध ना होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती तो वे ऐसी मनोहरी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है, उसे चाहे हम कहीं भी क्यों न रखें। जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराने पकड़ लेती हैं, तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारा घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि ये दूध ये दही तथा मक्खन रद्दी है। यही तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। ये दही इतना खराब है, ये मक्खन इतना खराब कि बंदर भी इसको नहीं खाते। वे पात्र को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखर देते हैं। यदि हम दही मक्खन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखते हैं तो अपने कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उसे अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चे को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छीके पर ऊंचे टांग देते हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काट के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचते हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जूटित आभूषण निकल ले तो अच्छा हो। ये सुनकर जसोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वो अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तो गोपियां कहती, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करो, आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करोगी? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक हैं जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तब माता जसोदा उन्हें बताती, अच्छा तुम लोग अपना मक्खन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच ना सके। तो उत्तर में गोपिया कहती, हाँ वास्तव में हम ऐसा ही कहती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्य में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक ना जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन न चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर सच फर्श पर प्रसाव कर देते हैं। कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चों को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत के सुन रहे हैं। कृष्ण बैठकर सुन रहा, वे सारे दिन हमारे दही तथा मक्खन चुराने को योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों तरह बैठे हैं, जरा उसके मुखमंडल तो देखो। जब माता यशोदा ने सारे उलाहने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा तो उसके भाले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर जसोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारे शिकायत कर रहे हैं। अपने माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित हैं झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालक से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि ये सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है या नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी ना खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया, तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण बाह्य आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्र के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्व, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीन गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीव, नित्यकाल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद लिया और तथा अपना पैपान कराते अपने आप को भी देखा। वे ये सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि ये सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकला कि वे या तो सपना देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर मैं मानसिक रूप में विक्षिप्त तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है कि ये मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति है, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना के अभिव्यक्ति से दूर हैं और जिनकी विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिने मेरी प्रजा हैं। ये सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंग शक्ति का फिर विस्तार किया, जिससे वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मित हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोदी में उठाकर भौतिक वे मातृ प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी। उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किया ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगे। निश्चय ही यशोदा ने अनेक अनेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फल स्वरूप उन्हें परम सत्य परमेश्वर भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तन पान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पूर्ण पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगा। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे, यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण के बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धारा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें, भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें, तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनहारी बल्लेपन के कारण उनके सारा ध्यान आकृष्ट करे। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार किया कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वर दे दिया, जिसके फल स्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई, और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपने प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारे बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण लीला की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। सो आज शाम को मंदिर में कीर्तन होगा, सारी आरती के बाद हम कीर्तन करेंगे। हाँ, ग्लोरिफिकेशन विल कीप इट फॉर टुमारो, दोज़ हू आर नॉट, हाँ, ग्लोरिफिकेशन जिसका बाकी रह गया है वो हम काल उनको ये दें। काल प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन अनुष्ठान होगा। आज चूंकि आज रविवार है, काफी लोग आएंगे तो मंदिर में कीर्तन। Hare Krishna, thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Can you take me to the garden this morning? Your turn.